Шилэн. Шилэн. एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय के पाक्षिक कार्यक्रम क्षितिज में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी न किसी अतिथि को लेकर के इस कार्यक्रम में आते हैं और उनके साथ साहित्य, कविताएं या जो भी जिस भी विषय में वो माहिर हैं, हम उनसे उनकी चर्चा करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम की मेहमान हैं डॉक्टर अरुणा अजीत सारिया, MBEG, और आपका स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप विश्व हिंदी सचिवालय के 16वें कार्यारंभ दिवस की मुख्य अतिथि रही हैं। आपके बारे में हम अपने श्रोताओं के साथ आगे और चर्चा करेंगे।
धन्यवाद कल्पना जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, मैं बहुत ही आभारी हूँ।
आप की शिक्षा के विषय में हमने पढ़ा और जाना कि आपकी PhD जो है वो स्वतंत्र युग के हिंदी उपन्यास पर है। रिसर्च फेलोशिप कलकत्ता विश्वविद्यालय से आपने की है। आपका MA हिंदी स्वर्ण पदक विजेता कलकत्ता विश्वविद्यालय की रही हैं आप। डिप्लोमा आपका फ्रेंच सुपीरियर अलायंस फ्रांसिस कलकत्ता का है और इससे अलग आपने कथक नृत्य में जो है वो कलकत्ता से डिप्लोमा भी किया है। आपका लंबा चौड़ा कार्य अनुभव है। आप इस विषय में कुछ हमारे श्रोताओं से अपनी चर्चा करेंगी?
जी अवश्य। मेरा जन्म कोलकाता में हुआ था
जी।
वैसे मेरे माता पिता आगरा निवासी थे
जी,
लेकिन अपने व्यवसाय के सिलसिले में कोलकाता आ गए थे। मेरी सारी पढ़ाई कोलकाता में हुई, वहीं से मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहले BA ऑनर्स, फिर वो भी हिंदी में
जी,
फिर MA और फिर PhD किया। मेरा शैक्षणिक अनुभव सारा का सारा UK में ही हुआ है। पहले मैं वहाँ प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाती थी।
आपके कार्य अनुभवों को लेकर काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो मेरे सामने है, मैं उसे अपने श्रोताओं के साथ जोड़ना चाहूँगी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल UK में प्राथमिक क्षेत्र में 35 वर्ष का आपका शिक्षण का अनुभव है और ब्रिनेल यूनिवर्सिटी UK के शिक्षकों को आप प्रशिक्षण प्रदान करती रही हैं 8 वर्ष तक। इसके अतिरिक्त सम्मानों की भी लिस्ट जो है वो कोई छोटी नहीं है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए आपको पुरस्कार मिले, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि रानी एलिजाबेथ द्वारा शिक्षा की सेवाओं के लिए आपको MBE मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के अलंकृत किया गया है, जॉन गिलक्रिस्ट UK के हिंदी शिक्षण सम्मान आदि आपकी झोली में तो ऐसे टपके हैं। आपके कुछ प्रकाशन भी हैं, अपने प्रकाशन जो हैं उनके विषय में कुछ हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
मैंने लिखने की शुरुआत बाल साहित्य से की थी
जी।
मैं जब UK में पढ़ा रही थी उस समय वहाँ के हिंदी भाषी जो विद्यार्थी थे
जी,
उनको अंग्रेज़ी सीखने में कुछ कठिनाई हो रही थी, तो मैंने द्विभाषा कहानी की किताबें लिखी थी ताकि वो बच्चे जो अंग्रेज़ी ठीक से नहीं समझते हैं वो उसको पहले हिंदी में पढ़ें और फिर उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद जो है उसको पढ़ें
जी,
तो उससे उनको समझने में सुविधा होगी।
बिल्कुल।
ये किताबें जो थीं ये वहाँ पर मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च प्रोजेक्ट था कि बायलिंगुअलिज्म द्विभाषा बच्चों के बौद्धिक विकास में किस तरह से सहायक होती है। तो इस शोध के अंतर्गत मैंने कई किताबें लिखी थी जो मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी से ही प्रकाशित हुई थी।
सभी जानते हैं कि शिक्षा जो है वो जीवन का आधार है
जी।
शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफ़ी काम भी किए हैं और मॉरिशस में अभी आप आई हैं, आपकी पहली, मेरे ख्याल से आपका पहला अनुभव है मॉरिशस का। यहाँ आपने छात्रों के साथ में एक कार्यक्रम किया, उनसे जुड़ी, उनकी मुश्किलें जानी, तो कुछ इस विषय में अपने विचार दें।
जी अवश्य। मुझे लगता है मैं अपने 3 दिन के मॉरिशस के अनुभव के आधार पर ही कह रही हूँ
जी।
मैं पहले दिन और दूसरे दिन आर्य समाज के कार्यक्रम में गई थी। वहाँ मुझे इतना सुखद आश्चर्य हुआ कि मॉरिशस की युवा पीढ़ी अपने वैदिक संस्कृति से इतनी जुड़ी हुई है। वहाँ जब मैंने देखा कि 200 से अधिक युवा युवतियाँ सामूहिक यज्ञ में हवन कर रहे थे
जी,
और वहाँ का आकाश वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज रहा था, तो मुझे लगा कि मॉरिशस में वैदिक संस्कृति पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन संस्कृति को संपूर्ण करने के लिए भाषा आवश्यक है। यदि संस्कृति आत्मा है तो भाषा उसका शरीर है। दोनों का विकास करके ही एक संतुलित व्यक्तित्व की निर्मिति हो सकती है
जी।
तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं कुछ व्यतिरेक है, क्योंकि हिंदी एक द्वितीय भाषा के रूप में सिखाई जाती है। उसमें यहाँ के विद्यार्थियों को समुचित समय या ध्यान अभी नहीं दिया जा रहा है, और मेरा जहाँ तक अनुभव बताता है, मुझे लगता है कि इसमें इसके तीन कारण हैं। पहला कारण ये है कि माता पिता हिंदी को बहुत महत्व नहीं दे रहे हैं।
इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो है हिंदी एकदम से बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी भारत में है, या आप देखें कि जो भारतीय हैं जैसे 24 घंटे हिंदी ही बोलते हैं, बात करते हैं बच्चों से। यहाँ पर क्योंकि उनको अंग्रेज़ी भी है, फ्रेंच भी है, तो उसका भी जो है असर उन पर पड़ता है।
जी अवश्य पड़ता है, लेकिन ये एक अपवाद नहीं है
जी।
मैं ब्रिटेन की बात करूं या विश्व के अन्य देशों की बात करूं जहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है, आपको जानकर के आश्चर्य हो शायद कि विश्व के 112 देशों में हिंदी का शिक्षण स्नातक और परास्नातक स्तर पर हो रहा है। और अमेरिका के कुछ स्कूलों ने तो प्राथमिक स्कूल में हिंदी को उनके पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बना दिया है। तो अमेरिका जैसे देश जिनकी भाषा अंग्रेज़ी है, वे यदि कर सकते हैं तो यहाँ तो जो भारत से आए हुए लोग हैं जिन अपनी विरासत में भाषा लेकर के आए थे
जी,
उनके लिए हिंदी को वरीयता न देना अत्यंत कष्टकर लगता है। लेकिन आज स्थिति यह है, जानती हूँ कि मॉरिशस भारत का ही एक लघु संस्करण सा है, और भारत की जो नई भाषा नीति है उसके अनुसार आज सारे के सारे वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग और चिकित्सा के विषय हिंदी में पढ़ाने की योजना शुरू हो चुकी है
जी।
और इसके लिए जितने भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनका अनुवाद हो रहा है। उससे होगा ये कि विद्यार्थी हिंदी भाषा में इन योग्यताओं को प्राप्त कर सकेंगे, और इन योग्यताओं के बल पर उन्हें रोजगार की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी।
यहाँ एक बात मैं पूछना चाहूँगी, जैसे अभी आपने बताया ये सही है, लेकिन मॉरिशस का जैसे अभी आपने देखा, आपने बच्चों को भी देखा कार्यशाला में, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगा होगा या आपने भी देखा कि बच्चे ज़्यादातर हिंदी नहीं बोलते हैं, इसलिए ये कठिनाइयाँ उनके सामने आती हैं, तो आप उनको इस बारे में क्या सुझाव दे सकती हैं?
जी अवश्य, मैंने वहाँ कार्यशाला में भी कहा था कि हिंदी को आप कक्षा से बाहर निकल कर जब निकलते हैं तो हिंदी को कक्षा में भीतर छोड़ के ना चले जाएं, अपने सहपाठियों से हिंदी में बात करें, बाहर आप हिंदी का प्रयोग करने की कोशिश करें, क्योंकि भाषा कोई भी हो वो अभ्यास से अपनी बनती है।
बिल्कुल।
और इसके साथ साथ उन्हें हिंदी के प्रति एक जो रुझान है उसको बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ के शिक्षकों को भी कुछ अधिक प्रयत्न करना चाहिए।
मॉरिशस और लंदन, वहाँ आपने हिंदी पढ़ाई है, यहाँ भी आपने देखा, तो आपने क्या विशेष अंतर पाया है?
मुझे लगता है कि वहाँ के अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों को शनिवार रविवार की जो कक्षाएं होती हैं
जी,
उसमें लेके जाते हैं। वहाँ मंदिरों में और चर्च हॉलों में हिंदी की पढ़ाई होती है, क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हिंदी सीखें, और क्योंकि कोई भी शिक्षा घर से शुरू होती है
जी,
और बालक का प्रथम शिक्षक उसके अभिभावक होते हैं
जी।
तो ये जो हमारी सोच है, इस सोच को यदि हम बदल सकें तो मुझे लगता है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से हिंदी की ओर आकर्षित होंगे।
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मॉरिशस में 300 से ज़्यादा जो बैठकाएं हैं वो कार्यरत हैं जिनमें शनिवार और रविवार को हिंदी पढ़ाई जाती है और बच्चे उसमें जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, पूरी तौर से उनको जो है हिंदी से जोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी ये एक खालीपन सा जो है, या हालांकि उतना नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर माता पिता को, शिक्षकों को, सबको जो है ध्यान देना होगा जिससे कि वे आगे बढ़ सकें।
जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ इतनी सारी बैठकाएँ यहाँ पर हैं जहाँ बच्चे जा रहे हैं, पर मैं जानना चाहूँगी कि वहाँ पर बच्चों की उपस्थिति कितनी है और उन बच्चों की प्रगति का क्या रिकॉर्ड है, क्योंकि बैठकें जो हैं यदि बिल्कुल अनौपचारिक हैं तो उसमें बच्चे कितनी प्रगति कर पाते हैं। बच्चों को किसी भी भाषा से जोड़ने के लिए उन्हें इस बात का अनुभव करवाना चाहिए कि वे उसमें प्रगति कर रहे हैं, उसका पाठ्यक्रम उनके लिए रोचक बनाना चाहिए ताकि वे उसमें अपनी खुशी से आना चाहें, ना कि उनको ज़बरदस्ती भेजा जाए। तो बैठकाएँ होती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके भीतर क्या होता है इसका एक पूरा कार्यक्रम देखना आवश्यक है। मुझे लगता है कि उसका एक मानक कार्यक्रम भी
बिल्कुल
हो।
बिल्कुल है, जहाँ प्रथमा, मध्यमा और उससे ऊपर तक की बीए तक की पढ़ाइयाँ उनकी होती हैं उसमें, और शिक्षक हैं, बच्चे काफ़ी आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो है, देखिए कोई भी चीज़ है, कोई भी संस्था है, कुछ है, लेकिन ज़रूरत जो होती है वो फिर भी उनको बांधे रखने की, और तब हम बांध सकते हैं जब उनके अंदर रुचि उत्पन्न।
जी जी,
ये ज़्यादा आवश्यक
जी,
है।
बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और रुचि उत्पन्न तभी होगी जब वे उसकी उपादेयता देख सकेंगे।
जी,
यदि वे देख सकेंगे कि आज हिंदी में अपनी योग्यता बढ़ाने के बाद उनके लिए व्यवसाय में अनुवाद करने के लिए या किसी भी तरह की संस्था में, जैसे कहीं इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में या वैज्ञानिक शोध में उनको आगे रोज़गार मिलने की संभावनाएं खुल रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी रुचि अपने आप बढ़ेगी। उन्हें ये पता होना चाहिए कि हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है, हिंदी आज वैश्विक रूप से विकसित हो रही है, और मुझे लगता है कि इस बात को यदि वे समझ सकें, क्योंकि उनके सामने पूरा भविष्य है, अब जब वे बड़े होकर के बाहर की दुनिया में काम करने जाएंगे, उस समय यदि उनके पास हिंदी होगी तो उनके रोज़गार की संभावनाएं अपरिमित हो जाएंगी,
क्योंकि आज हिंदी जो है वो दुनिया की भाषा बन चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है, व्यापार की भाषा है, शिक्षण की भाषा है, और कोई भी ऐसा विषय नहीं है जहाँ पर हिंदी जो है वो ना आती हो।
बिल्कुल,
हर संस्थान में हर जगह हिंदी ही हिंदी है।
जी, जी।
और आज के बच्चे तो टीवी पर और सिनेमा में हर तरह से हिंदी जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ है। एक बात बस दो मिनट में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज जो कार्यशाला थी उस पर अपने कुछ विचार दें।
कार्यशाला में मुझे बहुत ही सकारात्मक अनुभव हुआ।
जी,
मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि विद्यार्थी जिज्ञासु हैं।
जी,
मुझे लगा कि वे आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए मुझे आशा है कि मैंने उन्हें जो भी सुझाव दिए हैं उससे वे लाभान्वित होंगे, और उनके शिक्षक भी, उनको भी मैंने जो सुझाव दिए हैं, मुझे लगता है कि यदि वे उसका अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम देखने को मिलेंगे। आज का अनुभव मेरे लिए बहुत ही सकारात्मक था, और मुझे उसमें आमंत्रित करने के लिए मैं पुनः विश्व हिंदी सचिवालय के लिए आभार प्रकट करती हूँ,
और यहाँ के बच्चों के लिए जो उन्होंने आज के कार्यक्रम भी, जो कार्यक्रम और भी थे उसमें जो उन्होंने प्रश्न आपसे किए, और उनके बारे में भी जो है, आपने उनके बारे में क्या सोचा, वो क्या कर सकते, कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं?
मुझे लगा कि वो बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं।
जी,
उनके प्रश्न बहुत ही सटीक थे, और मुझे लगा कि उन्हें थोड़ी सी दिशा निर्देशन की कमी कहूँ या समय उनको पूरा नहीं दिया जा रहा है।
उनके लिए कुछ सुझाव आपकी तरफ से, वो कैसे अपने आप को हिंदी में आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसमें रुचि पैदा कर सकते हैं, कैसे, आपने अध्यापकों को भी देखा, वो कैसे अपनी कक्षाओं को रुचिकर बना सकते हैं?
शिक्षकों से भी यही कहा था और यहाँ भी मैं यही कहूँगी कि पाठ्यक्रम को उनकी अभिरुचि के अनुसार बनाना आवश्यक है। आज हम जिस समय पे हैं उस समय केवल पुराने पाठ्यक्रम के सहारे चलेंगे यदि, तो आज का विद्यार्थी उसमें अभिरुचि नहीं ले पाएगा। तो उनकी रुचि के अनुसार यदि पाठ्यक्रम बनाया जाए तो वो उसमें उससे ज़्यादा जुड़ सकेंगे और उसमें प्रगति करेंगे।
विशेष रूप से आप MBC आई, आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला, कुछ सीखा, कुछ अनुभव आपके जाने, और कुछ इन अनुभव यहाँ के अनुभवों से आपको भी आगे बढ़ने में मार्ग मिलेगा। इसके लिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी अवसर मिला तो अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद
जी। अवश्य मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद और नमस्कार।